पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू अंधा मत हो, यदि ये ज्ञान और ये नाम आपने इनको बता दिया, आने वाले समय में तेरे इस पंथ में तेरे वंशजों को काल ठगेगा और इनको भ्रमित कर लेगा, अपने दूत भेज देगा, उन दूतों को ये हाथ लग गए मूल मंत्र तो बिचली पीढ़ी मैं सबको पार करूंगा विश्व को, तो ये पार नहीं हो पाऊंगे भाई, मेरा मिशन खराब हो जाएगा, मेरा सारा दाव नष्ट हो जाएगा जो मैं लगाना चाहता हूं। तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये सार शब्द की तो बार ना जाई। अब धर्मदास जी बहुत दुखी हो गया, परमात्मा ने सोचा यू काम बिगाड़ेगा, यू डोबेगा, कहानी मेरी बनी बनाई। तो परमात्मा ने प्रेरणा की उस दिन, उसके अंदर प्रेरणा की और उसने कहा कि भगवान मैं बहुत अंधा हो चुका हूं, वो बस मेरे बस की बात नहीं रही। परमात्मा बोल मुझे सतलोक भेज दो भगवान, मुझे सतलोक व धुन लगा दी दाता ने, अचल तुझे सतलोक भेजते हैं। जगन्नाथपुरी में एक प्रेरणा की परमात्मा ने उसको कि अगर ये यहां रहेगा बच्चों में इसकी ममता नौ की नौ बनी रहेगी, यू काम बिगाड़ देगा, सारा यू नाम बता देगा और इसके बताया हुआ नाम ने काम तो करना नहीं क्योंकि अधिकारी नहीं, क्योंकि परमात्मा ने धर्मदास जी को आगे नाम देने का आदेश नहीं दिया था, केवल पांच नाम जो प्रथम मंत्र के यही दिया करते थे, इनका आदेश था। धर्मदास जी के लड़के जो परमात्मा के आशीर्वाद से हुआ था, कबीर जी के आशीर्वाद से चूड़ामणि जी, उसको भी स्वयं ही दीक्षा दी थी, स्वयं ही उसको आगे नाम पांच नाम देने का गुरुपद प्राप्त कराया था। पांच नाम कौन से, जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के, फर्स्ट एंड लास्ट उस समय नहीं दिया जाता था। अब ये लंबी कहानी है, बार बार सत्संग सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रथम और लास्ट मंत्र उस समय क्यों नहीं दिया जाता था, ये सत्संगों में बताया जाएगा, लेकिन अब विषय दूसरा है। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि धर्मदास मैं चारों युग में आता हूं और प्रत्येक प्राणी को जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसको पार करके ही छोड़ता हूं, और जब मैं एक बार जब समुद्र ने जगन्नाथ के मंदिर को बनने नहीं दिया था ईर्ष्यावश, पांच बार उसको खत्म कर दिया था बने बनाए मंदिर को, जगन्नाथपुरी के मंदिर को, तो उस समय मैंने स्वयं आकर के एक संत रूप धारण करके और वहां बैठा था समुद्र के किनारे, और समुद्र ऐसे उठ कर रहा था 40 फुट के करीब ऊंचा उठ गया से पूरा पहाड़ की तरह आगे को बढ़ रहा था, जैसे साइक्लोन आ जाती है समुद्री तूफान बोलते हैं, वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो मैंने ऐसे कर दिया था, मेरी शक्ति के सामने समुद्र वहीं का वहीं जाम हो गया था एज इट इज, और फिर विपर रूप धारण करके समुद्र का देव आया था। उसने मुझसे याचना की कि मैं समुद्र तोड़ने जा रहा हूं, मुझे जाने दे। तब मैंने उससे कहा कि भी मंदिर तोड़ने जा रहा हूं, मुझे जाने दे। तो मैंने उसको भाई कह दिया था कि अब तू इधर नहीं जा सकता समुद्र, मैंने राजा को वचन दे दिया है जो मंदिर बनवा रहा है, आप जा सकते हैं। कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी को ये प्रेरणा करनी थी परमात्मा ने कि भाई ताकि ये यहां से निकले। तो धर्मदास जी कहने लगे जी वो स्थान अब भी है जहां आपने ये समुद्र रोका था। परमात्मा ने कहा कि हाँ अब भी है, मैं देखना चाहता हूं महाराज, मुझे दिखा दो। परमात्मा चाहो थे कि यहां से निकले इस गंध से, अब वहां जाने में यानी बांधवगढ़ से और उड़ीसा जाने के लिए चल पड़े, 3-4 दिन में पहुंचे, जाकर के पैदल चल पड़े। अब वहां जाकर के परमात्मा ने ज्ञान दिया उसको, नए सिरे से समझाया कि भले आदमी कहां से आया था तू, क्या ये वंशज तेरे साथ रहेंगे, आज ये यहां जन्मे हैं, चलो कल इसकी मृत्यु होगी, अपन माने जाके नाइजीरिया में जन्म ले लें, तेरे कहां से हो गए भले आदमी। एक लेवा एक देवाद उत्तम, जैसे सुखदेव ऋषि ने अपने पिता व्यास जी से कहा था कि एक लेवा एक देवाद उत्तम, कोई किसी का पिता नहीं पुत्तम, ऋण संबंध दुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। आज तेरे परिवार है, कल पता नहीं कहां जन्म लेंगे, और वो कहां है आज, कोई मुसलमान के घर जन्म है, किसी का ईसाई के घर जन्म है, किसी का किसी के घर जन्म है, और आज वो तेरे घर आ रहे हैं। उसके बाद आपका संस्कार पूरा करके कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, 12 बाट हो जाएंगे। तो समझा नहीं, इतना सारा बन तेरे साथ 50 साल हो गए माथा मारते ने, और तू वहीं का वहीं खड़ा है। तब इतनी दूर पहुंच गया जब यहां से, और वहां जब ये ज्ञान नए से लेते सुना तो पहले भी करता, लेकिन 10-20 बार सत्संग ने सुनकर ये मन पक जाता है। और नो सोचा बस मैंने सब कुछ ज्ञान हो गया, खाक ज्ञान हो गया, इस ज्ञान को तो अंतिम सांस तक आधार बनाना पड़ेगा, सत्संग सुनते रहना पड़ेगा। 4 बात सीख कर वक्ता बन गए, यहां से सुनकर आप कहने लगे, बताने लगे, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान को सुनकर आम आदमी प्रशंसा करने लग जाएगा, और वह फिर उसको वो प्रशंसा ले डूबेगी प्राणी को, तो यह प्रभुता की भूख भी जीव का नाश का कारण बन जाती है। धर्मदास ने सोच बैठा था मैंने सारा ज्ञान हो गया, वहां जाके पता चला, कहने लगा जी मैं तो वहीं खड़ा था जहां से चला था, आपने मेरी आंख खोल दी भगवान, हे परमात्मा मुझे यहां से भेज दो, न मैं भी इस दलदल में फेर फंसूंगा। तब धर्मदास जी ने जीवित समाधि ली वहां पर कि मन भेज दो दाता। परमात्मा बोले ठीक है बैठ गुफा में, आगे पत्थर ला दिया, वो तो मालिक ने भेजना ही था, भेज दी उसकी आत्मा। उससे पहले धर्मदास जी को संतुष्ट किया, कहा कि भाई देखो, धर्मदास जी को फिर भी रह कर बातें याद आती, अगजी दया करियो आप। तो परमात्मा ने कहा था कि तेरे मैं, धर्मदास जी ने कहा कि भगवान आप कह रहे हो कि बिचली पीढ़ी जब आवेगी कलयुग 5505 बीत जाएगा, 5505 वर्ष, उस समय बिचली पीढ़ी का समय होगा, तब ये जीव पार होंगे। तो धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा आज तो आप बता रहे हो कि कलयुग डे बाई डे बिगड़ेगी बात सारी, दिन प्रतिदिन लोगों की वृत्ति खराब होती जाएगी कलयुग में, और जब घोर कलयुग आएगा तब तो सब लुटेरे हो जाएंगे, शराबी कुवाबी हो जाएंगे। तो परमात्मा 600-500 वर्ष पहले आगे जब ये समय आएगा उस समय तो लोग और ज्यादा बिगड़ जाएंगे, तब कैसे पार होंगे वो, और मेरे वंशज कैसे पार होंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि भाई ये 12 पंथ चलेंगे काल के, और 12वां पंथ गरीबदास का होगा, और उस गरीब दास के द्वारा मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट कराऊंगा और उस गरीब दास वाले पंथ में आगे चल के धर्मदास मैं स्वयं आऊंगा और मैं फिर उनको सबको पार करूंगा। बेशक किसी की कैसी ही वृत्ति हो जाएगी, क्योंकि बगैर ज्ञान के तो आत्मा ये जीव गलती पे गलती करता ही रहता है, जब इसको ज्ञान हो जाएगा फिर ये हाथ भी नहीं लाओगा उन बुराइयों को जो भक्ति बाधक होंगी। तो मैं स्वयं जाऊंगा, उन सबको फिर से नए सिरे से ज्ञान दूंगा और धर्मदास सतयुग जैसा माहौल बनाऊंगा पूरा पूरे विश्व में, और मैं सतनाम दूंगा, सारनाम दूंगा, सब शिक्षित करूंगा पहले। और कलयुग इसीलिए बना है ये कि इसमें मशीनरी युग होगा और ऐसे उपकरण बनाए जाएंगे, सबको शिक्षित करूंगा और फिर मेरे बच्चों को मैं अपनी पहचान कराऊंगा, सब सदग्रंथों से भगवान की महिमा का वर्णन कराऊंगा और सबको पार करूंगा। तेरे वंशज भी पार हो जाएंगे, तेरे को 42 वंश का आशीर्वाद इसलिए दिया है कि सभी अच्छी आत्माएं तेरे घरों में जन्म लेंगी और जब वो मेरी शरण में आएंगी, नाम ले लेंगे तो पार होंगे, नाम न लेंगे तेरे क्या कोई भी पार नहीं होगा। और जब कलयुग 5505 बीत जाएगा उस समय बिचली पीढ़ी का समय प्रारंभ होगा, उस समय सारे विश्व को पार करूंगा सतनाम का और सार नाम का, सब जगह बोलबाला होगा। जो भी सतनाम और सार नाम को ले लेगा धर्मदास, तेरे वंशज का सारा विश्व पार हो जाएगा। तब धर्मदास ने संतोष हुआ धर्मदास जी को कि भगवान ने कह दिया, यह फाइनल बात है, आप स्वयं आओगे फिर मुझे क्या चिंता भगवान, मुझे सतलोक भेज दो, अगर मैं वापस चला गया वहां पर बांधोगढ़ मैं दलदल में फिर फंस जाएगा। उस समय धर्मदास जी की लगभग 118 वर्ष की आयु होगी थी जब वो सतलोक गमन किया जीवित समाधि देकर। अपने आत्मा दास क्या सिद्ध करना चाह रहा है आपको, दास ये सिद्ध करना चाह रहा है कि ये ऐसी अनमोल जड़ी, ऐसा अनमोल ज्ञान और ऐसे ये कारगर मंत्र परमात्मा ने छुपा कर रखे थे आपके लिए। सबसे निकट थे धर्मदास जी, उसको भी आगे प्रतिबंध लगा दिया था कि जिक्र भी ना कर देना इस सतनाम और सार नाम का। जिन भी महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उन सबको मंत्र दिए लेकिन उनको आगे प्रतिबंध लगा दिया, और वो पक्के दृढ़ भगत थे जो गुरु जी ने कह दिया फाइनल है संसार, कहीं जाओ जो गुरु जी का आदेश है वो सिरोधार्य है, सारा संसार एक तरफ और वचन गुरु का एक तरफ। वो ऐसे महापुरुष थे तभी तो उनको सचखंड ले गए वापस ले आए और फिर उनको साथ रहे और भक्ति करो बच्चा तुम्हें सर्व सुख भी दूंगा सतलोक ले चलूंगा। तो इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को भगवान मिले थे बेई नदी पे और सचखंड लेकर गए, सारा कुछ दिखाकर वापस छोड़ा कि सतनाम से मोक्ष होगा, मैं काशी बनारस में धानक का काम करता हूं जुलाहे का वहां आ जाना। अब ये इस बात का विश्वास नानक साहब का नहीं हुआ कि भगवान और धानक का काम करे, जब वापस छोड़ दिया तो सतनाम बिना मोक्ष नहीं, और सतनाम मिले कहां, परमात्मा कह रहे मैं खुद वहां बनारस के अंदर हूं। तो सब लीला की जब वहां जाकर देखे तो उनको मिला बनारस में बैठे परमात्मा, वही रूप जो सचखंड में देखा था। तब नानक साहिब जी ने कहा था भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरासियाना बोता बार ये धानक रूप रहा करता। तो कहने का दास का भाव ये है कि तो नानक साहिब जी ने भी किसी भी सिख को ये दो अक्षर का मंत्र जाप करने को नहीं दिया, सार नाम की तो बात छोड़ो वो तो बहुत दूर की बातें, और स्वयं जाप करते थे। इसका प्रमाण है भाई बाला वाली जन्म साखी समुद्र की साखी में कि नानक साहिब जी दो अक्षर का नाम जाप करा करते, इसमें एक ओम है एक गुप्त है वो सही जाप करते थे, ये दास बार बार सार्वजनिक नहीं कर सकता उस मंत्र को। जिनको सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है वो सतनाम कौन सा है। तो कहने का भाव यह है कि नानक साहब जी को बना कर रखा था कि जिक्र नहीं करना, ऐसा झटका दे दिया मर्दाने को, सारा सिख समाज उससे इतना भयभीत हो गया कि इस मंत्र का जाप नहीं करना, इस जिक्र भी नहीं करना। कारण क्या था? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचड़ी पीढ़ी हंस नहीं तेरी। अगर ये सार शब्द बाहर जाएगा तो मेरे बच्चे बिचड़ी पीढ़ी वाले हंस पार नहीं होंगे। तो पुण्यात्माओं, ये सारा खाड़ा आपके लिए हो रहा था। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, ऐसे ऐसे प्राइम टाइम आपका मनुष्य जीवन स्त्री और पुरुष का, और सबसे पुण्यात्मा जो सतलोक आश्रम वाला तक पहुंच रहे हैं, किसी भी मीडिया से चाहे कोई किताब पढ़ के, कोई सीडी सुनकर क्या, या किसी बहन भाई से प्रेरित होकर के, चाहे कोई ये देखने भी आ जाता है कि देखता हूं पहली बार वहां क्या है, ऐसे बहुत से भगत परमात्मा के हंस इसी प्रेरणा से आए कि देख लेंगे, चल देखते हैं तुम्हारे गुरुजी का आश्रम देख के आते हैं। जब ज्ञान सुनते हैं, सबको भूख है भगवान की, सबको चाह उस परम पिता की, ये भूल पड़ी हुई है संसार के, आत्मा जाग जाती है और नाम लेकर जाते हैं। सौभाग्य जिनका जो अच्छी किस्मत वाले होते हैं तो यहाँ से नाम लेकर ही जाते। तो यहाँ आना, ये दीक्षा प्राप्त करना और ये सभी मंत्र प्राप्त करना, तो ये छोटी बात नहीं है। आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा की लाडली आत्मा हो, और धन है उन माता पिता से जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ। तो पुण्यात्माओं, आप हो बच्चे, आप हो हीरे और मोती इस परम पिता के। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में, अर्जा पैठू पाताल। गरीब दास जी कह रहे हैं, कबीर साहब ने बताया कि गरीब दास खोजत फिरूं, ढूंढत फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हो, क्योंकि आप चाहे हीरा मोती लाल कीता कीचड़ में भी पड़ा है, रेत में पड़ा है, जौहरी की नजर पड़ी उसने उसी समय उठावेगा और अंदर गाल लेगा, भी तिरा लीजिए मैं कोई देख ना ले। तो आप वो लाल हो, दास ने आपको पहचान लिया और आप अपनी परमात्मा की पहचान करा दी, और आप यहां आम आत्मा नहीं आ सकती, उस परमेश्वर के विशेष आत्माएं हैं जो सबसे पहले आएंगी। फिर क्या होगा? पहले जब परमात्मा स्वयं आए थे आज से 600 वर्ष पहले, तो उसमें कहीं भी खड़े होकर के एक तारा लेकर के तुम्बुरा बोलने थे, उसने चौराहे पर खड़े हो जाते जैसे बाजीगर तमाशा दिखाया करे, मीठी मीठी आवाज में अमृतवाणी बोले। आत्मा को परमात्मा की चाह है, और जो सबसे पहले वही हमारे साथ जुड़ते हैं, जो पहले किसी ना किसी युग में इस कलयुग के इसी कलयुग के इस समय में भक्ति कर चुके होंगे, अब जो भक्ति कर रहे हैं अब अरबों खरबों की संख्या में पार हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि वो कुछ फिसल भी जाएंगे, अरबों खरबों फिसल भी जाएंगे, ये ऐसा समय आएगा। तो उस समय वो जो फिसले हुए हैं वो फिर कहीं संस्कार वश कोई इटली में, कोई इराक में, कोई ईरान में, कोई कहीं कोई हिंदुस्तान में फिर काल पटकेगा। पहले तो ऊपर रखेगा इनको, क्योंकि आप वो अनमोल मंत्र जाप कर रहे हो जिनकी गजब की कीमत है। एक श्वास एक सतनाम की कितनी कीमत बताई है जो जिसको प्राप्त हो गई। गरीबदास साहेब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे बता रहे हैं? सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासे अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम की 2 अक्षर के मंत्र का विधिवत साधन मंत्र जाप करके गुरुजी से लेकर दास से अधिकारी से। और एक श्वास के सिमरण की कितनी वैल्यू है, कितना वजन है, उसकी ताकत कितनी है कि एक तराजू के पलड़े में एक सतनाम की कीमत रख दो, इतना वजन है उसका, इतना वजन होगा। और 14 दूसरे पलड़े में 14 लोक चढ़ावे, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, और ये सब खेड़े द्वीप और ये तलोतल, ये जितने 14 लोक चढ़ावे, और 3 लोक पासिंग धरे, 3 लोक यानी पृथ्वी और स्वर्ग और पाताल लोक। पासिंग क्या होती है थोड़ा समझा दूं, या हरियाणा की भाषा में गरीबदास साहिब जी ने ये अनमोल ज्ञान बोला है। पासिंग क्या होती है, दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूं चना बाजरा मोल लेने आते थे, तो वो देसी तखड़ियां होती थी पहले, हाथ से पकड़कर तोला करते थे, उसको ऐसे लटक जा, उसको ऊपर पकड़ने का एक रस्सी सी बांध रखी होती थी सेंटर में, दोनों तरफ पलड़े लटक रहे होते थे। तो हमारे पिताजी कहते थे कि भाई सौदागर यानी लाला जी, तेरी तखड़ी चेक करा, इसमें पासिंग ना हो, पासिंग माने एरर। तो जो भी तखड़, जो पलड़ा नीचे को होता था, दूसरा ऊंचे को होता था, तो ऊंचे वाले में कुछ उसी कणक को उठाकर, जैसे 50 मण गेहूं तोलने हैं तो गेहूं की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल दी जाती थी, ताकि उनका बैलेंस हो जाए, एरर लेस ताखड़ी हो जाए तराजू, उसको पासिंग कहा करते थे। उसी कणक में तो उठा के एक मुट्ठी और तराजू के एक पलड़े में डाल ली, बस वो तो पासिंग है उसका, वो तो सौदे में है ही नहीं, सौदा से तो उससे अलग है वो 50 मण गेहूं लेने उसने। तो यहां गरीबदास साहिब जी कहते हैं, सतनाम एक पालड़ रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, इनकी कीमत 14 लोक की कीमत एक तरफ रख दे, और ये पृथ्वी लोग एक एक लाटों पर मरे कटके, कहते 3 लोक तो पासिंग दर दे, पृथ्वी लोग स्वर्ग लोक और पाताल लोक, तो एक सतनाम की कीमत, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, ये राम ये नाम ऐसी खुशी देगा आपको। तो इस सतनाम की एक कीमत, एक सांस भी आपने ले लिया, कितनी कीमत बनेगी, आप कितने जाप करते हो, कितना धन भक्ति का आप बैंक बैलेंस बना रहे हो, ये बैंक बैलेंस आपको पार करेगा, और यहां का नकली बैंक बैलेंस आपको यहीं पर ओझा के मार देगा। तो परमात्मा कहते हैं अपना इस मार्ग को ग्रहण करो। तो जो दास बताना चाह रहा था कि सबसे पहले अब वो पुण्यात्मा आएंगी जो पीछे बिछड़ गए थे पिछले कलयुग में, चतुर्युग जो आते हैं और उनमें फिर कोई ऐसा कलयुग में ही दाव लगता है, तो उनको अब जैसे किसी ने 2 वर्ष नाम लिया, किसी ने 4 वर्ष लिया, किसी ने 10 वर्ष लिया, और वो फिर नाम छोड़ गया, क्योंकि जो वो गिरेगा वही रहेगा, वही जो यहां से दूर हो जाएगा। अब क्या बताते हैं, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे और मानुष जन्म पाके खोए। सतगुरु का नाम ले लिया सच्चे गुरु से, और फिर उसने विमुख हो गया, छोड़ गया, किसी भी अपनी गलती से या कोई उसमें दोष आ गया, कोई पाप कर्म अड़ गया, तो कहते सतगुरु विमुखा युग युग रोवे और मानुष जन्म पाके खोए। तो एक श्वास की कीमत कितनी है, और प्रथम मंत्र आप इन्हीं सभी देवताओं के मूल मंत्र आपको प्राप्त हैं, ये भी बहुत अजब मंत्र हैं, इनकी बहुत कीमत है। तो फिर ये काल क्या करेगा, आपको कैसे नचाएगा, जैसे प्रथम मंत्र में गणेश जी का मंत्र है, ये मूल मंत्र है इनके, इन मंत्रों के बिना लाभ नहीं होगा, और ये मंत्र भी अधिकारी से हो। अब पुण्य आत्माओं, अब जैसे आप किसी अधिकारी डीसी या एसपी के पास जाते हो, एक सिंपल एप्लीकेशन ले जाते हो, तो अपने समय पर कार्रवाई करेगा, और उसके ऊपर फिर किसी की मोहर लग जा, किसकी, मंत्री की, मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री का कोई संकेत कोड वर्ड हो, उस पर आदेश हो, तो पांच मिनट में काम हो सबसे पहले होगा। तो इसी प्रकार पूरे संत तय नाम लेकर के और फिर ये मंत्रों का जाप किया जाए, ये मूल मंत्र है, तो तुरंत काम करेंगे। वो सतर्क हो जाते हैं देवता की किसके माध्यम से आया है, तब उनको लाभ मिलता है। जैसे आप हमारे हरियाणा में जैसे खागड़ हो या जोटा होता भैंसा, अब उसने भैंसा भैंसा करे जाओ कति नहीं जान देता वो, और उसको एक बार कर दे हुर तो ऐसे देखेगा नू, वो उसका कोड वर्ड है, वो मूल मंत्र है उसका, जिससे वो अट्रैक्ट होता है, उसके बस की बात नहीं। तो इसी प्रकार ये मूल मंत्र हैं, इन मूल मंत्रों के जाप करने से ये देवता ऑटोमेटिकली प्रभावित होते हैं, इनके बस की बात नहीं, ये सब अपनी क्रियाएं आपको लाभ देना तुरंत प्रारंभ कर देते हैं। तो जो पार हो गए वो तो होगी, उनका तो समस्या हल होगी, और जो रहेगी फिर काल कैसे नाश करेगा उस भक्ति का, ये प्रत्येक शहर प्रत्येक लोक में इसने रेस्टोरेंट बना रखे हैं, और वहां का जो भी देव है वो कमीशन लेता आपके पुनों से, और तब अपने लोकों को चला रहे हैं। तो गणेश जी के लोक में जाओगे आपको, क्योंकि आप गणेश जी का मंत्र कर रहे हो, वहां कोई देवता बन जाओगे, वहां कोई गण बन जाओगे, और आपके पुण्य उस मंत्र की कमाई को वहां नष्ट करके, उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, वहां पर भी आपकी पूंजी आपकी नाश होगी, सुख सभी प्राप्त होंगे जो यहाँ के नकली सुख हैं, नाचना गाना अप्सराएं शादी ब्याह फंड संड सारा होगा वहां पर, और लेकिन जेब कटेगी आपकी। जैसे कोई होटल में जाता है रेस्टोरेंट में रुकता है तो उसकी जेब पैसा वो अपनी बल्ले से खर्चता है, उसकी उसी की जो पूंजी है वो नष्ट होती है, व्यय होती है, और वो सब सुविधाएं उपलब्ध है, घंटी बजाओ सारी चीज खाओ, लेकिन जेब कट रही है उसकी। इसी प्रकार प्रत्येक युग में प्रत्येक लोक में प्रत्येक देव की जो साधना आप कर रहे हो वहां वहां जाओगे, फिर विष्णु जी के लोक में जाओगे, फिर शिव जी के लोक में जाओगे, फिर दुर्गा के लोक में जाओगे, अपनी पूंजी नाश करते जाओगे, आगे चलते जाओगे। जिन्होंने सतनाम का जाप कर रखा है वो फिर ब्रह्म लोक में जाएगा। ब्रह्म लोक में इस काल ने के और धोखा कर रखा है, उसमें चार विभाग कर रखे, स्वर्ग को चार भागों में बांट रखा है, और उसका नाम लिख दिया नकली, सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक। और जो दूसरे सतनाम का जो जाप है, सतनाम के अंदर दो अक्षर का नाम है, वो तो ब्रह्म लोक में जो सबसे पहले सतर का ब्रह्म लोक है उसमें नाश कराता है, और दूसरा जो मंत्र है उसके साथ उसको ऊपर के लोकों में उससे ऊपर अलग स्थान बना रखे हैं, उससे अच्छी क्वालिटी के होटल उनमें नाश कराता है। और जिसको सतनाम प्राप्त है उस प्राणी को परमात्मा फिर आकर के जब उसको मानव शरीर प्राप्त होता है उसको फिर से ग्रहण करते हैं, उसको फिर से नए सिरे से फिर तैयार करते हैं, ज्ञान देते हैं। अब देखो पुण्यात्मा कहां, तो अब आपका फाइनल गेम है यो, जैसे समझ में आ जाए आपके बाद अपना करवा के कल्याण, मर्यादा में रहो, इतनी भक्ति जो आप कर रहे हो पर्याप्त है। परमात्मा को सब पता है कि इस काल के लोक में कौन कितनी भक्ति कर सकता है, यो करण नहीं देता, 100 टेंशन पैदा करके रखता है एक व्यक्ति के, बताइए जीव कैसे पार होगा, कैसे भक्ति करेगा। तो इसलिए इन्होंने ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि सारे दिन में 100 200 500 मंत्र भी सतनाम के कर लिए मैं तो भी पार कर दूंगा। मालूम है मालिक को कि ये कर नहीं सकते, इस हालत कर रखा है इसने जालिम ने, तो ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि इसकी कीमत इतनी गजब की बना दर दी कि ये आपकी जो है संग इतनी बढ़िया कमाई बन जाएगी। अब जैसे एक व्यक्ति 200 रुपये कमावे सारे दिन में, और एक ऐसा बिजनेस बता दिया किसी ने रोज के 2 लाख रुपए गल्ला लेता है, तो उसमें 10-20-50 हजार की कमाई भी होती होगी उसको। तो आपको वो बिजनेस दे दिया, वो तरीका बता दिया कि इसमें आपको रोज की घनी कमाई होगी। तो इस प्रकार अब जो रह जाएगा, अब जो सारनाम प्राप्त प्राणी भी रह जाते, सारनाम प्राप्त हो गया इसका मतलब ये नहीं मुक्ति होगी। जिस दिन भी जरा सी गफलत करी उसी दिन काल बुद्धि पकड़ लेगा आपकी, चाहे कुछ भी प्राप्त कर रखे आपने। परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, आन माने मर्यादा में, और काल लगे नी तेरा बाणा। तो जब हम सतगुरु की शरण से दूर हो जाएंगे तब काल आपको जकड़ देगा, आपकी बुद्धि खुलना नहीं देगा। बुद्धि खुल नहीं होती तो पहले खुल गई होती आपकी, अब खुली आपकी बुद्धि परमात्मा के इस ज्ञान से, दास की माध्यम से, तो फिर उतनी ही जकड़ देगा। एक दो महीनों के बाद ही आप याना बंद कर दोगे, उसी तरह बुद्धि घुमा देगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की घुमा रखी थार, आपका ब्योंत क्या है, आपकी तो फिर बुनियाद क्या है विचार करना। तो कहने का तो दास आपको समझाना चाह रहा आज के सत्संग में। और ये फिर कितने दयालु हैं, कहते हैं इन भोली आत्माओं को यदि वहां, यहां तो रह गए आप, क्योंकि कलयुग का जो पीक टाइम है प्राइम टाइम खत्म हो गया, और फिर आप ऊपर चले गए गणेश जी के लोक में, विष्णु जी के लोक, अब आपका वो तो काम बिगड़ गया। कितना समय बढ़ा लिया आपने, पता नहीं कब हजार कलयुग बीत जाएंगे, कितना हजारों युग बीत जाएंगे, तो हजारों युग के बाद तुम्हें वापस पटकेगा धरती पर कति खाली करके, आप नहीं तो ऊपर रखेगा आपको उस गणेश जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी के लोक में, फिर उस नकली सतलोक और अलख लोक में, फिर धरती पर पटक देगा कति खाली बना के, और फिर यहां मनमान पृथ्वी का राजा हो जाए, इतनी कीमत फिर भी रह जाएगी आपकी। राजा बन के आपको पता है यहाँ कितने पाप इकट्ठे करता है, सारा दिन बुरे करना, बकवाद करना, छह रानियां बना लेना, और फिर शिकार खेलन जाना, जीव हिंसा करना, कति फुड़वा देता कर्मों को, और फिर पटक देगा गधा बना के, फिर पता नहीं कब मनुष्य जीवन मिलेगा, कब जाकर आपको ये समय मिलेगा जो आज है। अब कितने दयालु हैं ये परमात्मा, कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आने छुटाऊं तो। हमारे इस ज्ञान को, हमारे गुणों को, हमारे अंदर क्या महिमा, मेरी महिमा को नहीं भूलेगा। अब आप विष्णु लोक में चले गए या गणेश जी के लोक में चले गए, और उस समय आपकी बुद्धि ने काम किया इस ज्ञान के आधार से, और वहां आप रोए भगवान के लिए कि हे परमात्मा हमसे गलती बन गई, हे परमात्मा हम तो यहां अपना पूंजी नाश करेंगे, आप बताया करते थे वहां जाकर तो हमने बहुत गलती करी दाता, बहुत गलती बनी। अगर आत्मा से मुझे फिर पुकारेगा तो तुझे वहां से भी छुड़वा लाऊंगा मैं। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अब वहां से छुटा भी लेंगे फिर वो तो वो समय था, वो तो जा चुका है, छुटा कर वो क्या करेंगे, जन्म ही देंगे वापस पृथ्वी पर। और यहां आपकी इतनी पुण्य है कि उसके आधार से आप यहां पूरी पृथ्वी के शासक बन जाओगे, तो क्या फायदा हुआ उसका। अब परमात्मा क्या करते हैं कि जो सारनाम प्राप्त प्राणी है और वो भी विचलित हो गया, उसको फिर याद आता है कि गुरुजी ये बताया करते थे कि हम तो गलत आएंगे या तो हमारी पूंजी नाश होगी, तो उनको मालिक वहां जाते हैं और उनसे कहते हैं छोड़ो इनको, चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु चाहे शिव या दुर्गा के लोक में हो, और कहेगा इसको छोड़ो हमारे हंस को, तो उसका क्या करेगा, उसको इतना बेनिफिट मिलेगा कि परमात्मा ने यहां एक ब्रह्मांड के अंदर अपना मिनी सतलोक बना रखा है। पुणात्मा ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये वो गुप्त ज्ञान है जो अभी तक किसी को मालिक ने बताया नहीं, इस दास पर मेहर करी है। तो इसके अंदर एक प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा का ऐसे है जैसे प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है। तो ये परमात्मा उस प्राणी को, ये के थोड़े होंगे जो ऐसे अरबों खरबों की संख्या में विचलित भी होंगे, अरबों खरबों की संख्या में अगर लगे रहे तो आप पार भी होंगे, तो उनको छुटवा, जब उनका समझ में वहां जाकर बात याद आएगी तो उनको वहां से छुटवा के इस मिनी सतलोक में रखेगा, और उसको उनके ऊपर कैसी रजा कैसा करेगा कि जमीन पर फिर डालने ही पड़ेंगे, उनको सतयुग से फिर जन्म देगा। इनके हाथ नहीं लगने देगा काल के ऊपर के लोकों में। तो सतयुग में जो अच्छी आत्माएं, जैसे आप सुन देखते हो सतयुग के अंदर, सतयुग कैसे आएगा, कलयुग कब नष्ट होगा, 43,20,000 टोटल समय है चार युगों का, और 4,32,000 समय है इस कलयुग का। जब कलयुग का लास्ट होगा उस समय सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सभी प्राणी मांसाहारी हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी, उसमें से 15 वर्ष की आयु में ये पहलवान भी हो लेंगे, जवान भी हो लेंगे, बच्चे भी पैदा कर लेंगे, मर भी लिया करेंगे, मकान नहीं रहेंगे, भूकंप बहुत आया करेंगे, वृक्षों के पत्ते लगने बंद हो जाएंगे, फलों की तो बात छोड़ो, और मांसाहारी हो जाएंगे, एक दूसरे ने खा जाया करेंगे, कति बुरा हाल हो जाएगा, निर्लज हो जाएंगे, कोई भक्ति के आसपास नहीं रहेगा, और बेल खोद कर रहा करेंगे, धरती उपजाऊ नहीं रहेगी। कहते हैं तीन हाथ अंश खेच लेत कलयुग धरती का, और उगे कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि कलयुग का जब अंत होगा, तीन हाथ, एक हाथ इतना लंबा यहां से लेकर ये एक हाथ है 1.5 फुट का, यानी 4.5 फुट नीचे तक पृथ्वी का उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कितना यूरिया, कितना खाद यो डाला जाता है, यो इसको नाश कर रहा है नीचे पृथ्वी के उपजाऊ अंश को, और प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा, वर्षा होनी बंद हो जाएगी, पृथ्वी पर सब बुरा हाल हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा, एक नीकलंक नाम का अवतार, जिसको कल्कि अवतार लिखा है उसके अंदर, सुधा सागर के अंदर, श्री मधुसुधा सागर मधुभागवत में, तो वो आएगा, राजा हरिश्चंद्र होगा वो, जो सतयुग में पुनकर्मी प्राणी था, काल की भक्ति कराया करता, उसको स्वर्ग में भेज दिया। अब उसको विष्णु जी के लोक में, वहां से फिर इसको अवतार 10वां अवतार बनाकर भेजा जाएगा कल्कि नाम से। अब उसके कर्म बिगड़वा होगा काल, तो उस समय उन सभी कृत घनी प्राणियों को, कलयुग के अंत वालों को नू काटेगा, जैसे कसाई काटा रहा बकरों को, सबको मारेगा, केवल उनको छोड़ेगा जिसकी थोड़ी बहुत भी आस्था उस समय भक्ति की होगी। उस समय क्या होगा कि सब 1.5 फुट के, 2 फुट की कद हो जाएगा सब, इससे ऊपर नहीं रहेगा, 1.5 या 2 फुट का कद होगा। 5 वर्ष की लड़की का विवाह हो जाया करेगा, और 5 वर्ष की लड़की के बालक होने लग जाएंगे। फिर वह कद कितना, 1.5 फुट का, वो बच्चे कितने होंगे, 6-6 इंच के। तो इस प्रकार वो कलयुग का अंत होगा। उसमें क्या होगा, एक क्योंकि एक तो संसारिक लोगों के किस्मत के आधार से वर्षा होती है, उनके पुण्यों के आधार से, फिर परमात्मा अपने हिसाब से सृष्टि क्रम को चेंज करते समय इतनी जबरदस्त वर्षा होगी पृथ्वी के ऊपर, कई कई फुट, 20-20, 30-30 फुट पानी खड़ा हो जाएगा पूरी पृथ्वी पर, और जो वहां व्यक्ति बचे हुए होंगे वो ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे ऊंचे स्थानों पर। और फिर क्या होगा कि धीरे धीरे वो पानी सूखेगा, और जमीन के अंदर जो विष भर गया वो जल उसको बाहर ऊपर निकालेगा, और पूरी पृथ्वी पर जब जल सूखता जाएगा वहीं पर पेड़ पौधे होते जाएंगे, भर जाएगी पृथ्वी से, और सुंदर वातावरण होगा, प्रदूषण खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी। तो उल्टा काम होगा, माँ बाप तो 1.5 फुट के और बेटे होंगे 3-3 फुट के बच्चे, बेटा बेटी, यानी कद बढ़ने लग जाएगा उनका, और सतयुग के अंदर 100-100 फुट की, 100-100 से भी ऊंची फुट कद हो जाता, 100 फुट से भी ज्यादा। कहने का भाव ये है कि उस समय जो आत्माएं जन्म लेंगी वो होंगी जो परमात्मा ने वहां लुटने पिटने तक बचा ली थी, और उनको अपने मिनी सतलोक में रख लिया था, उनको फिर जन्म देगा। अब उनके खूब बढ़िया संस्कार, बढ़िया वातावरण बनाया भगवान ने, सुंदर फलदार वृक्ष होंगे, कोई काम नहीं। आजकल जो गेहूं, कणक, बाजरा, ज्वार बहुत, उस समय तो ऐसे खड़े रहा करेंगे, बस जाओ और ऐसे इकट्ठे करो, झाड़ो जितना चाहिए तोड़ लिया और खाओ। जैसे वन से बाग से फल लाकर तोड़ गए, ऐसे गेहूं जितना भी ये कणक है खाने पीने की सामग्री, ये सब ऐसे भरी रहा करेगी, काम नहीं। और फिर वो क्या करा करेंगे, काल तो इनके पीछे लगा रहता है कि इनको पता नहीं लगे, भक्ति का भ्रमित करवाता है मनु बना के, मनु जी वो गलत ज्ञान भरवाता है। और फिर ये सभी उसी आधार से भक्ति भी करते हैं, समाधि भी लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति कर रखी पहले सतयुग कलयुग में, अब भक्ति बिना नहीं रह सकते। प्रत्येक प्राणी सतयुग में साधना करता है, समाधिस्थ हो जाता है, सारा सुख होता है, शरीर भी स्वस्थ होता है, कोई कष्ट नहीं होता, मानसिक परेशानी नहीं होती। तो उस समय इनको भक्ति मार्ग पर लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो काल ने परमात्मा से कहा था कि तीन युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव हो जाओ। काल ने सोचा था तीन इन युगों में इनको भक्ति, ये भक्ति युक्त रहेंगे, इनमें ये भक्ति करके पार ना हो जाए, इसलिए तीन युग मालिक से मांग लिए। वो तो चतुर न्यो बनया था, अकबई चल तीन युग में इनकी भक्ति का नाश करवा दूंगा मैं, और फिर ये बन जाएंगे भिखारी कलयुग में, और फिर नकली संत पंथ भेजकर, जैसे ये अन्य पूजाएं देवी देवता और मंदिर मंदिर की बनवा के इनको गलत साधना पर लगा दूंगा, ये कति भक्ति योग नहीं रहेंगे। अब देखो पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया, और ये राधा स्वामी पंथरी सिब्रांत जितनी बड़ी हुई, दंडन सतगुरु द्रोण दाल और जय गुरुदेव, इसमें आपको दिखा दूंगा, जिस मार्ग पर नहीं लगे तो आने वाले 50 वर्ष के अंदर सब नास्तिक हो जाएंगे, राम नाम कहने वाला नहीं रहेगा, ऐसे दुख आएंगे इनके घर पर, क्योंकि भगवान का सहारा नहीं। फिर पिछले पुण्य कब तक चलेंगे प्राणी के, तब तक वो सुखी दिखाई देंगे, फिर कैर टूटने लग जाएगा इनके घरों में, सब नास्तिक हो जाएं, कहेंगे कोई भगवान नहीं कहीं पर भी। और काल यही चाहता है कि नास्तिक हो जाएं, फिर आएंगे वो भगवान और उसका दूत उसका दास, कोई सुनेगा ही नहीं। लेकिन भगवान ने पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनको सारे सुख होंगे, और ये भक्ति नहीं कर सकते मेरे वाली, इसलिए फरी छोड़ देता, ठीक है भाई इन तीन युगों में ना ले जाऊंगा मैं, कल युग में ले जाऊंगा। अब देखो यहाँ कितने दुखी आते हैं, पुण्य खत्म हो लिए, पाप का दौर शुरू हो गया, नकली संतों से नकली साधनाओं से कोई आगे लाभ चार दर लगा नहीं, तो दुख है दुखाने थे। तो परमात्मा को पता था ये मुझे तभी चाहेंगे जब ये महादुखी हो जाएंगे, जब तक इनको सुख है ये कोसों दूर रहते मेरे से। अब उन आत्माओं का जन्म होगा सतयुग में, जो दास आपको बता रहे हैं, लेकिन कितना लंबा काम बढ़ा दिया उन्होंने। अब फिर सतयुग में समझे नहीं क्यों सब सुखी, फिर स्वदेशी बन जाएंगे, पाक जाएंगे, उनमें सिद्धियां होती हैं, थोड़ी भक्ति से उनमें सिद्धियां आ जाएंगी। अगस्त ऋषि ने सातों समुद्र पी लिए एक घूट में, और प्रभु पाक गया, आज तक गुण गाए जाते हैं, खा कहिए फिर क्या हो गया मोक्ष उसका, सात समुद्र पीण की सिद्धि बनाने से प्राप्त कर लेने से। तो काल ऐसे डिलेड हुआ था है। तो कहने का भाव ये दास का कि साथ साथ फिर अन्य नई जनरेशन नए भी संस्कार वश उत्पन्न होते रहते हैं। तो जब परमात्मा आते कलयुग में आए, कहीं भी खड़े होकर के तंबूरा लेकर के चौराहे पर अपनी प्यारी भाषा बोलने लगे, वहां पर 150-200 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते, 10-20 घंटा आध घंटा अपना विचार करते, वहां ये वाणी बोलिया करते भगवान जो सुख संवेद की है, मानुष जन्म पाया कर नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रण धीरम, एक पलक में राज विराजी जमके पड़े दुंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। अब ये वाणी आत्मा के सिद्धि जाकर लगे तो वहां बैठे भगत उनमें से 20-30-50 आकर चरणों में बैठ जाते, हे भगवान हमें को दीक्षा दो, को रास्ता बताओ। तो इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख से सो गए थे, 64 लाख उस समय आज से 600 वर्ष पहले, और उनको सुख दिए। फिर उनको ये प्रथम मंत्र के 5 नाम दिया करते थे दाता, इन 5 नामों का घाटा जोड़ दिया इन दूसरे पंथ नकलिया ने, इनके ये 5 नाम बिना समझ में आए, रंकारोंकार जोत स्वरूप निरंजन सतनाम और फलाना नाम वटवट देने लग गए। तो भाई पूरे ग्रुप ने बात बननी। तो कहने का भाव दास का ये है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। गरीब दास इस योग को समझ न सकता कोई। अब जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे तब हम अशिक्षित थे, 64 लाख से सोना कोई बालकों का खेल नहीं है, ना कोई मीडिया था ना कोई प्रचार साधन था। कैसे हुई एक दिन में 1000 जगह प्रकट हो जाते थे परमात्मा और सबको समझाते थे, उनको सुख देते थे, क्योंकि सबको इतना सुख दे दिया कि वो समझ में नहीं आया करते उनके ये संत के आशीर्वाद से मुझे ऐसा लाभ हो गया, नाम लेते इतने सुख होने लगे। तो 64 लाख हुए थे लेकिन उनको ज्ञान नहीं था, अशिक्षित थे। जब सुख हुआ तो सुख हुआ तो सुख है, फिर कोई भी आ गया, अरे यू क्या, ये तो क्या जाने भगवान के बारे में, अशिक्षित है, दुलाह है, ऐसा है, छोटी जाति का है। तो कुछ सुख होते ही ये आत्मा, ये काल, इसका दाव लगता है। परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे जो नाम हृदय से जावे और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। वो सुख भी हमारे लिए हमारा दुश्मन बन जाता है, जो उस सुख की हमें जरूरत नहीं, भगवान जो आपसे दूर करे। इतना कष्ट दिए रखना दाता तेरी याद बनी रहे, हमें समझाना चाहते हैं परमात्मा। और फिर क्या बताते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाया, छदावे और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो 64 लाख से हो गए, सबका सुख हुए और गुण गावे, जो कि भगवान आ रहे हैं भाई, एक बार नाम दिया था, आशीर्वाद दिया था, ये सुख हो गया, सोसवान बतावे। और परमात्मा ने एक लीला करी थी कि इनको परख के देखूं ये ज्ञान से लगे हैं या केवल वैसे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एक लीला की थी एक दिन, वो लंबा समय है फिर बताएंगे। और एक लीला की थी दाता ने, एक क्योंकि लंबी कहानी है, एक दिन सत्संग कर रहे थे परमात्मा, क्योंकि दिन में धंधा करा करते, रात में सत्संग करा करते कि भी तुम भी फ्री मैं भी फ्री, दिन में अपना काल की तुम ये पेट की निर्वाह कर लिया करो। तो रात को सत्संग कर रहे थे, एक वैश्या का मकान था नियर बाई आसपास कहीं, रात के मौसम सुहाना मौसम था, रात का शांत मौसम था, मालिक वो तो लीला थी, अपनी आत्मा कहीं भी गर्त में पड़ी है उसको उठाना ही था। अब वो बैठ गई झांकी में अपने मकान के और मालिक सत्संग सुना रहा था, भाई ऐसा पाप लगता है, ऐसा मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता उनका विनाश हो जाता है, आगे पशु बनते हैं पक्षी बनते हैं, बुराई करना नहीं चाहिए। सत्संग सुनाया, वो पुण्यात्मा थी, बेटी का कलजा भराया कि मन तक घोर पाप कमा लिया, सारी उम्र को शुभ है नहीं बना मेरे से। तो वह लड़की परमात्मा के चरणों में आगे उठ के और कहा, भगवान का मेरे जैसी पापन का भी पाप नाश हो जाएगा, क्या मेरे जैसी पापनी भी पार हो भक्ति कर सकती है। परमात्मा ने कहा, बेटा नौका के अंदर, एक किश्ती के अंदर, नौका के अंदर चाहे पत्थर रखो चाहे घास फूस और रुई रखो, कितना भारी वस्तु है पत्थर और चाहे कितने भारी हल्का है रुई, उसका स्वभाव है बेटा पार करने का। और फिर कहते हैं एक लोहा पूजा में राखत, एक गर्भधिक पड़ो और पारस गुण अवगुण ही देख कर थकंदन खरो। तो सारा कुछ समझा कर उस बेटी को संतोष दिया और उसने बताया कि मैं तो जी वैसा हूं, क्या मेरा भी उद्धार होगा कि बेटा बुराई, ऐसा कोई जीव नहीं है जो यहां बुराई ना करता हो, क्योंकि ये लोक ऐसा है, ना चाहते भी बुराइयां हो जाती हैं। अब आपको कितना मैला कपड़ा है, साबुन और जल प्राप्त हुआ, निर्बल हो गया, खूब मेहनत करके उसने साफ करे अपने ने, भक्ति करे। तो वह लड़की को ऐसी प्रेरणा लगी, सब बुराई छोड़ दी, लेकिन हमारी आदत है कि हम फिर भी उसको उस दृष्टि से नहीं देखते अज्ञान के कारण। वो लड़की आती, अब उसको तो पिछला जो समय गया वो बुरा दिखाई देता कि कैसे अपनी पिछला जो समय गया उसको पूरा करूं, ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के पास आती, उनके चरण छूती, मत्था टेकती, पैर दबाती। तो दूसरे जो संगत वाले थे, सिर फिरे जिन सुख हो गया था, वो जो आपस में बतलान लग गए, भाई ये अच्छी बात नहीं, एक वैश्य आती है गुरु जी के पास बैठती है, लोग क्या कहेंगे, संगत बदनाम हो जाएगी। उस लड़की को धमकाने लग गए कि तू मत आया कर यहाँ पर, तेने सारा माहौल बिगाड़ दिया। अब वो लड़की फिर और ज्यादा दुखी होगी कि मुश्किल से राह पाया था ये भगवान में, अब क्या बनेगा। तो उसने गुरुदेव के पास रोती रही। परमेश्वर ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा? पता था उनको क्यों रो रही है बेटी। उन रोते रोते सारी कहानी बताई, जी मैं निकम्मी तो हो ही हूँ, इसलिए आपके पास आई हूँ कि निकम्मी का उद्धार हो जाता है, आपने बताया। लेकिन कुछ भगत भाई, कुछ बहनें ऐसे ऐसे विरोध कर रही हैं, मुझे आने से मना करते हैं। तो परमात्मा सत्संग के माध्यम से सबको उपदेश दिया करते थे, एक एक को किस किस को कहे, सत्संग के माध्यम से ज्ञान दिया करते थे। कहते हैं, कुष्टि हो वे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। कभी भक्ति भगत कोई भी व्यक्ति सत्संग में आएगा, चाहे चोर है, डाकू है, रोगी है और कोई वैसा है, जब तक मैला कपड़ा साबुन और जल वाटर के टच में नहीं आओगा तो वो साफ कैसे होगा। अरे भाई, भक्तों के लक्षण ये नहीं होते, चाहे वैसा कभी विश्वास हो उसको अपनी बहन समझना, पाप से नफरत करो पापी से नहीं, ये तो आम आदमी भी कहता है। और सभी, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक संत था और वो बहुत प्रसिद्ध था, उसको पता था कि उसकी वचन में बहुत शक्ति है, वो कुछ कह देता हुआ पार हो जाती है। तो कहीं से जा रहा था, एक लड़की को पीट रहे थे गांव वाले। उसने पूछा, भी क्यों मार रहे हो उस बेटी को? गांव वालों ने बताया कि ये व्यभिचारिणी है, ये पापिनी है, अपराधी है, ऐसे ऐसे करती है। संत बोले, भी रुक जाओ, सजा मैं बताऊंगा, ऐसे देंगे कि पत्थर उठाओ सभी और सब मारेंगे इसको, पर वो पत्थर मारना जिसने ये पाप ना करा, वैसा नहीं तो यही खत्म हो जाओगे। पत्थर डाल के सारे खिसेंगे। तो हम अपने दोस्तों को पीछे रखते हैं, दूसरों को उछालते रहते हैं, तो हम भक्त बनना चाहिए। अब कुछ दिन तो शांत हुए, फिर धीरे धीरे बकवाद करने लगे कि भी अच्छा नहीं लगता। तो परमात्मा ने देखना था कि ये भक्त नहीं है, जब गुरु की आज्ञा पालन नहीं कर रहे, जब तो मैं भगवान था, जब इनका सो सुख हुआ करते थे, अब देखते हैं इनको क्या होगा। तो एक दिन परमात्मा ने कहा कि ला इसका पक्का काम कर दूं, इनको देख लेता हूं कितने भक्त हैं कितने अभक्त हैं। उस लड़की से कहा वैसा से कि बेटा कल तू पूरा हार श्रृंगार करके सब आभूषण जो भी तेरे पास है पहन के आ जा। अच्छा पिताजी, रविदास जी कबीर परमेश्वर के साथ ज्यादा रहते थे। रविदास जी से कहा कि एक हाथी ला किराए पर, हाथी लिया किराए पर रविदास जी। एक परमात्मा ने गंगा जल भर लिया बोतल में कबीर जी ने, और लड़की को बिठा लिया बीच में, पीछा बैठ के आगे रविदास जी से कहा कि अब तो चला इस हाथी ने। अब उस लड़की के हाथ धर लिया कंधे पर और बोतल गंगा जल भर रखी थी रिनो पी हुए, और ऐसे मस्ती होकर बाजार, बीच बाजार से निकाल दिया, काशी के बाजार।